श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। श्री मुरारि गुप्त त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण शारदीय रास यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेम हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज के दिन से कार्तिक का जो महीना है वो शुरू हो गया है। वैसे कार्तिक का महीना कल से शुरू होगा। आज पूर्णिमा है, आश्विन पूर्णिमा, लेकिन निर्भर करता है कि किस प्रकार से निर्णय किया जाए। तो ये वैष्णव कैलेंडर डिपार्टमेंट ने ये निर्णय किया है कि कार्तिक का महीना आज से माना जाएगा। इस प्रकार की भी विधि है कि कार्तिक का महीना एक दिन पहले से माना जाए। तो आज से जो है कार्तिक का महीना शुरू हुआ। तो इस विषय में बहुत सी घटनाएं हैं शास्त्रों में कि कार्तिक के महीने का कितना महात्म्य है। तो इसको आप सुनिए। ये कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण में लिखा हुआ है। पद्म पुराण से मैं आपको कुछ कथा सुनाऊंगा। इतना समय नहीं है कि पूरा महात्म्य सुनाया जाए। कार्तिक बहुत विस्तृत महात्म्य है कार्तिक का, लेकिन जितना समय है हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वार्तालाप है ये चल रहा है पृथु महाराज और नारद जी के बीच में। आप लोग जानते हैं पृथु महाराज कौन है? एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, वैष्णव राजा, बहुत बड़े भक्त राजा हुए हैं। क्या नाम उनका? पृथु महाराज है? और वे प्रश्न कर रहे नारद जी से। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। राजा पृथु बोले कि हे महाराज, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत वर्णन किया, जो मैंने भली भांति श्रवण किया। सेतिहासमिदं ब्रह्मन् महात्म्यं कथितं मम अस्त्याश्चर्यकरं सम्यक् तुलस्या तच्युतं मया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म्य कहिए और ये व्रत पहले किसने किया, कैसे किया, इस वर्णन करिए। कार्तिक के महात्म्य का है ना। राजा पृथु पूछ रहे हैं कि आपने फल तो बताया है, लेकिन और महात्म बताइए कि पहले किसने इस कार्तिक व्रत को किया, कैसे किया। यदूर्जे व्रतिना पुंसाम फलम महात्मोदाहृतम तत्पुनर्ब्रूहि महात्म्यम केन चीर्णम इदम कथम। नारद जी बोले कि सह्य पर्वत पर करबीरपुर नामक नगर है। एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? सह्य, हामेया, सह्य पर्वत। उसमें करबीरपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में धर्मेंद्र के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। सुनने सब लोग, उस करबीरपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका क्या नाम था? धर्मदत्त। असिन आसीन सह्याद्रि विषय करबीर पुरे पुरा ब्राह्मणो धर्मविद कश्चन धर्मदत्तेति विश्रुतः। वो ब्राह्मण सदा विष्णु का व्रत करने वाला था। विष्णु का व्रत, विष्णु का व्रत का मतलब है कि शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, इनका नहीं। वैष्णव, जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णव व्रत का पालन करते हैं, वैष्णव का व्रत है ना। तो विष्णु व्रत का, विष्णु का व्रत करने वाला निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान और अतिथियों का सेवक था। विष्णु व्रत करा सस्वं विष्णु पूजानता सदा द्वादशाक्षर विद्यायाम जगनिष्ठो तिथि प्रिया। एक समय वो कार्तिक के महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। कार्तिक का संयम था, कार्तिक व्रत ये कौन सा है? वैष्णव व्रत है। एकादशी का व्रत वैष्णव का है, आप समझ रहे हैं? तो जो वैष्णव लोग होते हैं वैष्णव का व्रत करते हैं। तो कार्तिक में उसका नियम था, क्या नियम था कि पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के लिए हरि मंदिर को गया। एक पहर रात्रि जब रह जाए तो उठना है, रात्रि के पिछले पहर में उठना एक कार्तिक का जो है एक ये भी नियम है, रात्रि के पिछले पहर में उठना। रात्रि का पिछला पहर निशांत काल कहलाता है, जो 3:22 से 5:46 तक होता है, तो उसमें उठना है, है ना? तो कार्तिक के महीने में वो जो है हरि जागरण के लिए हरि मंदिर को गया। अब वो हरि जागरण मतलब उस समय उठ करके स्नान करना, मंगल आरती करना और मंदिर में समय बिताना, ये क्या है? हरि जागरण, है ना? तो हरि जागरण के लिए हरि मंदिर को गया। कदाचिन कार्तिके मासी हरि जागरणाय रात्र्यां तुर्यांश सेवसायां जगामे हरि मंदिरम। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा ही रहा था, सुन ले ध्यान से, हरि के पूजन की सामग्री लेकर के वो ब्राह्मण जा रहा था। इसका मतलब है कि मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, वो अपने घर से मंदिर के लिए पूजा की सामग्री थारी में सजा करके ले जा रहा था, है ना? तो पूजा की सामग्री क्या होती है? फूल, कुछ फूल होते हैं, अगरबत्ती होती है, है? और जल होता है, है ना? और वस्त्र होता है, है ना? और आरती, आरती होती है। तो इस तरह से वो जो है फूल वो सब पूजा की सामग्री थाल में रख करके मंदिर जा रहा था, क्या करने के लिए? मंगल आरती करने के लिए, भगवान की मंगल आरती करने के लिए जा रहा था, है ना? अब इस्कॉन मंदिरों में सब पुजारी पहले से नियुक्त रहते हैं मंगल आरती के लिए, है ना? आपको तो जाकर के दर्शन करना है और गाना है, कीर्तन करना है, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था उस मंदिर में। उस मंदिर में वो ब्राह्मण जो है स्वयं ही मतलब जाता था, कोई उसको बोलता नहीं था, लेकिन उसका नियम था। तो स्वयं ही आरती की थाली अपने हाथ में लेकर के पूजन की सामग्री लेकर वो ब्राह्मण जा रहा था, उसी समय एक भयंकर रूप वाली टेढ़ी टाढ़ों वाली और जीभ जिसकी चल रही है ऐसे, जीभ निकली बाहर, है ना, और हिल रही है जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र वाली एक राक्षसी मिली रास्ते में। कैसी राक्षसी है? भयंकर रूप है, टेढ़ी दाणे, दांत टेढ़े, और जीभ निकली बाहर हिल रही है, और भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र हैं, और नग्न है, और रूखे मांस और लंबे ओठ, और घर घर शब्द करती हुई आवाज से क्या निकल रही है? घर घर शब्द निकल रहा है। राक्षसी आई सामने, हरि पूजोपकरणान् प्रग्रह्य प्रजिता सदा तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भीम दर्शनान् वक्रदंष्ट्रा लोलजिह्वा निमग्ना रक्त लोचनान् दिगंबरा सुप्त शुष्क मांसा लंबोष्ठी घर घर सुनाम। उसको देख करके वो ब्राह्मण भय से घबरा गया, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ, समझ रहे? आप भी घबरा जाएंगे, कौन ही घबरा जाएगा, है? रास्ते में वो राक्षसी मिली तो घबरा गया, उसका शरीर कांपने लगा भय के मारे। उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा डर के मारे, भगवान की पूजा की थाली फेंक के मारी उसको राक्षसी को, क्या करे अपने रक्षा के लिए। अब भगवान की पूजा की सामग्री तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, है? लेकिन उसने उसी को ही मारा, उसके हाथ में था, है ना, तो उसने मारा। ताम दृष्ट्वा भयवित्रस्तः कम्पितामेव स्तदां पूजोपकरणे सर्वे पयोभिश्चाहनद्भयान्। हरि का स्मरण करके, हरि का स्मरण करके और तुलसी ज्योति जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। हरि बोल। देखो तुलसी ज्योति जल था और हरि 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 डर के मारे उसने बोला हरि 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 और मारा उसको। ये भक्त का जो है ये लक्षण है, पहचान है भक्त की। कोई भी कष्ट हो, भय का अवसर हो तो क्या करता है वो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भय का अवसर हो, है ना, तो हो सकता है कि पूरा महामंत्र ना बोल पाए, लेकिन हरि कृष्ण ऐसे एक नाम भी मतलब उसके मुख से निकलता है, हैं? कृष्णा कृष्णा, हैं? ये नाम भी उसके मुख से निकलता है भय के अवसर पर। तो ये ब्राह्मण जो है ऐसा भक्त था जिसका बहुत अभ्यास था नाम में, नाम में इतना अभ्यास होना चाहिए कि कोई भी भय का अवसर आए तो क्या बोलना है, कृष्णा ये बोलना है, है ना। तो उसने जो है ब्राह्मण ने वो पूजा की थाली फेंक के मारी कृष्ण का नाम लेकर के, उस पापी उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। अतः संस्मृत्यसाम संस्मृत्यतन संस्मृत्यजन हरेर नाम तुलसी युक्त मारिणाम सोहनत्पादकम तस्यात् तस्मात् सर्वम् अकालयम्। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वो बोली। अब सोचो कि क्या हुआ, उस पूजा के जल लगने से उसको पिछले जन्म की सब याद आ गई कि मैंने क्या पाप किया था और मुझे क्या गति मिल रही है। तो ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली, कहा तो खाने के लिए आई थी और अभी क्या कर रही है, ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोल रही है। अतः संस्मृत्य सा पूर्व जन्म कर्म विभाग जाम स्वाम दशाम अब्रवीण विप्रम दंडवत चापणम सा। कल्हा बोली, उसका नाम क्या है, कल्हा। कल्हा बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, हे ब्राह्मण अतः मैं कैसे उत्तम गति प्राप्त करूं, अब मैं कैसे उत्तम गति प्राप्त करूंगी। पूर्व कर्म विपाके दशाम मेताम गतास्मि हम तद्गतम तो पुनर्विप्र प्राप्नुयाम उत्तमाम गतिम। नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कल्हा को देखकर वो ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। सुनिए ध्यान से, प्रणाम करके अपने कर्मों को बताते हुए ब्राह्मण से वो बोल रही है। तो ब्राह्मण क्या बोले, ताम दृष्ट्वा प्रणताम सम्यग् वदमानाम सुकर्म तन् अतीव विस्मितो विप्रं तदा वचनम् अब्रवीत्। धर्मदत्त बोले, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई, पूछा किसने, पूछा धर्मदत्त ब्राह्मण ने पूछा, तू कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, सो मुझसे सब बता। केने कर्म विपाकेन तुम दशाम ईदृशीं गता कुतस्त्या काच किं शीला तत्सर्वं कथयस्व मे। कल्हा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। अपनी बात बता रही है, क्या बता रही है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, मैं उसकी स्त्री थी, कल्हा मेरा नाम था और मैं बहुत निष्ठुर थी। सौराष्ट्र नगरे ब्रह्मन् भिक्षुनामा भवत् द्विजाहम् तस्याहम् गृहिणी पूर्वम् कला करहा क्योति निष्ठुरा। मैंने कभी वचन से भी अपने पति का शुभ नहीं किया, कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया, मैं सीतापति को धोखा देती रही। मैंने क्या किया अपने पति को, क्या दिया, धोखा दिया हमेशा, अच्छा भोजन कभी नहीं दिया। न किंचन मया भर्तुर वत्सापि समुद्रतम नार्पितम तत्समिष्ठानम भर्तुर वंचन शीलया। मुझ कलह से जब ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तब उसने दूसरी स्त्री को ब्याहने का विचार किया। सुनने ध्यान से, मेरे व्यवहार से ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तो उसने क्या विचार किया, दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। कलह प्रिया नित्यम भयोद्विग्न मनायताम परिणे तुम दधान्याम तो प्रतिश्चक्रे मति मम। तब मैं विष खाकर प्राणों को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हुई। तो मैंने विष खाकर के प्राण त्याग दिए। क्यों विष खाया, अपने पति को बदनाम करने के लिए, अपने पति को बदनाम करने के लिए है? कि मेरे पति इतने दुष्ट हैं कि मैंने विष खाकर के आत्महत्या कर ली है? तो मैंने विष खाकर के आत्महत्या कर ली तो यम के दूत मुझे बांध कर मारते हुए यम लोग ले आए। यम के दूतों ने क्या किया, मुझे बांधा और मारा पीटा और कहां लाए, यम लोग में लाए। ततो गरम समादाय प्राणान् त्यक्त्वा मृत्युं गताम् अत बद्धावत्तिमानाम् माम् निर्यम किं कराम्। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त इसने क्या कर्म किए हैं, सो देखो। यमस्य माम तथा दृष्ट्वा चित्रगुप्तम अपृच्छत अनया किं कृतं कर्म चित्रगुप्त विलोकय। यमराज की सेवा में चित्रगुप्त रहते हैं और चित्रगुप्त के पास में बही खाता रहता है जिसमें खोल करके सुनाते हैं किसने क्या कर्म किए, है ना, इसने भला या बुरा जो कुछ कर्म किया हो उसी का फल पाएगी, मुझे बताओ। कौन बोले, यमराज बोले, चित्रगुप्त से बोले कि बताओ मुझे इसने कैसे कर्म किए। तब चित्रगुप्त मुझे डांटते हुए बोले, यमस्य माम तथा दृष्ट्वा चित्रगुप्तम अपृच्छत अनया किं कृतं कर्म चित्रगुप्त विलोकय। प्राप्नोत् सा कर्म फलम शुभम वायदे वाशुभम चित्रगुप्त तथा वाक्यम भर्जयन माम वाचे सा। चित्रगुप्त बोले इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है। क्या नहीं किया, शुभ कर्म कुछ भी नहीं किया, स्वयं मीठे भोजन को खाती हुई इसने पति को नहीं दिया। क्या नहीं दिया अपने पति को, स्वादिष्ट भोजन नहीं दिया और खुद खाती थी, खुद खाती थी स्वादिष्ट भोजन, अपने पति को कभी नहीं दिया। अनया तो शुभम कर्म कृतम किंचन न विदिते मिष्टान्नम भुञ्जमानेयम् न भर्तरी तदर्पितम्। इससे बलगुनी नामक पक्षी की योनि में पड़कर अपनी विष्ठा खाती रहे। बलगुनी पक्षी जानते कौन, बलगुनी पक्षी चमगादड़ बनकर के अपनी विष्ठा खाए। चमगादड़ को क्या खाना पड़ता है, अपनी विष्ठा। चमगादड़ का जो मल होता है उसके मुंह से ही निकलता है, तो विष्ठा खाने के समान हो गया, है ना। तो अपनी विष्ठा खाए, क्यों अपनी विष्ठा खाए, क्या कर्म किया था इसने, अच्छा भोजन खाती थी अपने पति को नहीं खिलाती थी, इसका फल क्या होगा, अपनी विष्ठा खुद खाए चमगादड़ बनकर। और इसने अपने पति से सदा द्वेष और कलह किया इसलिए ये विष्ठा खाने वाले सुकर योनि में प्राप्त हो स्वरी बने। एक तो चमगादड़ मल मुंह से निकालती है, है ना, लेकिन स्वर और भी बुरा है। स्वरी जो है दूसरों की विष्ठा खाती है, है ना, और भी बुरी, तो ये सुगरी भी बनेगी। क्यों बनेगी? क्या कर्म किया इसने बुरा? अपने पति के साथ इसने द्वेष और कलह किया, इसलिए सुगरी बनेगी। सदा रसोई करने के पात्र अर्थात कड़ाही पटुली में अकेली भोजन करती थी। क्या करती थी? जिनमें रसोई बनाई जाती है उन्हीं भोजन में खाती थी, जिससे पति को पता ना चले। समझिए, जिस बर्तन में भोजन बनाती थी उसी से वो उसी में खा लेती थी चुपचाप, किसी को पता ना चले कि इसने क्या बनाया और क्या खाया है। और बर्तन अगर इस्तेमाल करेगी, उन दिनों तो बेसन नहीं होता था, नल नहीं होता था, है ना, तो बहुत लंबा काम होता था बर्तन साफ करना। इसलिए क्या करती थी? जिन बर्तन में भोजन बनाती थी उसी में खा लेती थी, और धोती भी नहीं थी, है ना। तो क्या हुआ? विष्ठाती सुकरी यूनो तस्मात् दृष्टत्वे हमारे पाक भांडे सदा भूंगते भूंगते चय काये तस्तता। अकेली भोजन करती थी इसलिए बिल्ली बने। इसको बिल्ली क्यों नहीं प्राप्त होगी? बिल्ली क्या करती है? चुपचाप जब कोई नहीं देख रहा है तो अपना खाती है, तो बिल्ली बनेगी है। इसने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है। पति को बदनाम करने के लिए क्या किया इसने? विष खाकर के आत्महत्या की है। तस्मा देशा बिडाली तो सुजाता पद भक्षणी भरतारम बिजो दृश्य आत्मघाता कृतो नया। इसलिए ये प्रेत शरीर में स्थित रहे, ये तुम्हारे दूतों द्वारा मरु प्रदेश में पहुंचाने योग्य है। तस्मात् प्रेत शरीरे भी तिष्ठत्वे एकता तिष्ठत्वे साथ निंदिता अतश्चैव मरो देशे प्रति प्रातितव्या हट भट स्तव। वहां प्रेत शरीर में स्थित ये बहुत काल पर्यंत रहे, फिर अशुभ कर्म करने वाली ये और 3 योनियों को भोग करेगी। तत्र प्रेत शरीरस्था चरम दृष्टत्वयम् तथा ऊर्ध्वम् योनित्रयम् च सा गुणत्वौषधकारिणी। कला बोली उसके अनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में भूख प्यास से पीड़ित अपने कर्मों से बहुत दुखी रहती हूँ। कितने समय से प्रेत योनि में हूँ? 500 साल से। और किस प्रकार का पीड़ा पा रही हूं? भूख और प्यास की पीड़ा पा रही हूं। और फिर अशुभ करने वाली वहां प्रेत शरीर में स्थित ये बहुत काल पर्यंत रहे, फिर अशुभ कर्म करने वाली ये और 3 योनियों का भोग करेगी। क्या समझे? मरु का मरु स्थान में, मरु स्थान का मतलब क्या है? जहां पानी नहीं बरसता वहां पर रहे और भूख प्यास से पीड़ित रहेगी, और फिर 3 योनियों का भोग करेगी। इसके बाद तत्र प्रेत शरीरस्था चरम तिष्ठत्वयम् तथा ऊर्ध्वम् योनित्रयम् च सा गुणत्वो शुभकारिणी। तो कला बोली उसके अनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में भूख प्यास से पीड़ित अपने कर्म से सदा दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। एक वैश्य के शरीर में मैंने अपना स्थान जमाया और उसके शरीर के साथ मैं कहां पर आ गई? दो नदियों के संगम पर आ गई। कौन सी दो नदियां हैं?
कृष्णा और वेणी दो नदियों के संगम पर आई।
तदा चुंछा मया ही तुम गच्छन् दृष्टो तुजोत्तम तुम हस्तस्तुरसी नीर संसर्गत संसर्ग गत पापया।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे आने वाली तीन योनि और इस प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं।
बहुत रो रो करके बोल रही है। क्या बोल रही है? अभी मुझे तीन योनि और मिल रही है, पहली कौन सी योनि मिलेगी?
चमगादड़ की, जो मल अपना मुंह से निकालती है। फिर दूसरी योनि मिलेगी मुझे कौन सी?
सुगड़ी, जो दूसरों का मल खाती है। इसके बाद फिर कौन सी योनि मिलेगी? बिल्ली की, जो चोरी चोरी छिप छिप के खाती है।
तो ऐसा उपाय करो कि मैं इस प्रेत योनि से भी मुक्त जाऊं और आगे तीन योनियों को भी ना प्राप्त करूं।
इस प्रकार कढ़ा के वचन सुनकर और पूर्व कर्म फल से उत्पन्न उसकी गिलानी देखने में उत्पन्न कृपा से ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला। अब ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, तो बहुत देर तक सोचा फिर बोला। कौन बोला? ब्राह्मण, धर्मदत्त ब्राह्मण।
भूख से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल से संसर्ग जल के संसर्ग से मेरा पाप दूर हो गया है।
संसर्ग पापयाम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुझ पर कृपा करो जिस समय आगे होने वाली तीन योनि तथा प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। तत्कृपां गुरु विप्रेन्द्र कथम मुक्तिम वाप्नुयाम योनि त्रयात् अग्र भवान् अस्माच्च प्रेत देहतः।
इस प्रकार कल्हा के वचन सुनकर और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानी देखने में अत्यंत कृपा से चलायमान चित्त वाला वो ब्राह्मण बहुत देर तक सोच करके दुख से यह वचन बोला।
इत्थं न शम्य कल्हा वचनं दिदाग्र्यां सत्कर्म पाक भव विस्मय दुःख युक्तां तन्ग्राणी दर्शन कृपा चल सिद्धवृत्ते ध्यात्वा चिरम सवचनम जिगाद दुःखा।
अब धर्मदत्त बोले, सुनिए ध्यान से, एक बड़ी चिंता की बात हो गई। राक्षसी जो है करे मेरा उद्धार करो, है ना। धर्मदत्त बोले कि देखो, तीर्थ करने से दान करने से व्रत करने से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। अब तू प्रेत योनि में है तो तेरा अधिकार नहीं है कि तू तीर्थ करे व्रत करे दान करे, तेरा तो अधिकार नहीं है। क्यों क्यों नहीं कर सकती तीर्थ व्रत और दान? प्रेत योनि में है इसलिए। परंतु
विलियम यान दे पापानी तीर्थ दान है व्रता देवी प्रतिदेह सितायास्ते ते सेवाधिकारिता।
तेरी किलानी को देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया है और उधार के बिना मेरा मन सुखी ना होगा। जब तक मैं तेरा उधार ना कर दूं तब तक मेरा मन सुखी नहीं होगा। किसने कहा? ब्राह्मण ने कहा।
तीन
योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अधि निंदित प्रेत योनि में भी थोड़े समय से पुण्य थोड़े पुण्य से क्षीण ना होगी। हाँ, तो तीन योनि तुझे प्राप्त होने वाली हैं वो भी बहुत
हाँ, बड़े पाप के कारण है, और जो प्रेत योनि है उससे भी तेरा उद्धार थोड़े पुण्य से नहीं होगा। पातकम चा तमात्युग्रम योनि त्रय में पागतम बाल पे छीते पुण्य है प्रेतस्तम चात्रिगर हितम। अतः जन्म से आज तक मैंने जो कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। जन्म भर मैंने क्या किया, कार्तिक व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं देता हूँ तुझको, तो तेरी अच्छी गति हो जाए। ये कहा ब्राह्मण ने। तस्मादा जन्म चरितम जन्म कार्तिक व्रतम तत्पुण्यर्थ भाग्य न क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकती। कार्तिक व्रत पुण्य ने साम्यम ज्ञान सर्वथा यज्ञ दानानी तीर्थानी दत्तान्य भी यतो ध्रुवम। तो नारद जी कहते हैं ऐसा कहकर जैसे धर्मदत्त ने उसे द्वादश अक्षर मंत्र सुनाया। द्वादश अक्षर मंत्र यानी 12 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित पानी उस पर छिड़का। इत्युक्त्वा धर्मदत्तो सौ यावत्ताभ्य सेचयन् तुलसी मिश्रित तो ये न श्रावयन् दशदा द्वादशाक्षरम। तैसे ही वो प्रेत योनि से छूट गई और जल्दी ही अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदरी हो गई। अरे वो तो कैसे वो प्रेत योनि से मुक्त हो गई, वो अपने जीवन भर किए गए कार्तिक व्रत का आधार पुण्य दिया उसने, प्रेत योनि से मुक्त हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली तदासा दंडवत भूमो प्रणामातः तंदुजम वाचसा तदा वाक्यम हर्ष गदगद भाषणी। कड़ा बोली हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कृपा से नरक से छूटी, पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप नरक हो गए, नरक नहीं हो गए नौका हो गए, क्षमा करिए। पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप क्या हो गए, नौका हो गए। तस्मन तत्प्रसादा द्विज श्रेष्ठ है निर्मुक्ता नर्याद हम पाप भोग मज्जन मानाया तुम नरभूसी तुम नरभूतोसी मे ध्रुवम। नारद जी बोले उस ब्राह्मण से कहती हुई उस कल्हा ने प्रकाशमान और विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान को देखा। यथमसा वदति विप्रम दर्शयांतक दर्शायांतक दर्शायांतम अम्बरान विमानम भासुर युक्तम विष्णु रूप धरेर गणे। उस कलह को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस कला को जो है विष्णु के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। जिनके पास मोबाइल है मोबाइल को बंद कर दीजिए, मैंने बंद कर दिया। और भगवान के जो द्वारपाल थे विमान में जो आए थे उनके नाम क्या थे, पुण्यशील और सुशील। क्या नाम थे, पुण्यशील और सुशील। उन्होंने उत्तम विमान में बैठाया। किसको बैठाया उत्तम विमान में, कढ़ा को। अतसा तन विमानाग्र्यम वास्थाभ्याम अधिरोपितां पुण्यशील सुशीलाभ्याम अवसरो गण सेविताम। उस समय उस विमान को धर्मदत्त ने विस्मय के साथ देकर उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पहली बार जीवन में पहली बार ऐसा देखा। देखो एक प्रेत योनि में एक राक्षसी है, उसको मैंने अपना जो है आधा पुण्य दिया कार्तिक का, तो ये तो विष्णु रूप में चले गए, है ना, तो बड़े आश्चर्य की घटना देखी। तद्विमानं तदा पश्यन् धर्मदत्ता सविस्मयम् प्रभात दण्डवत् भूमौ दृष्ट्वा तो विष्णु रूपिणौ। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देखकर उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। पुण्यशील सुशील तमुत्थाप्यान तमुजम सभ्य नंदन वाक्यम चतुर्धर्म संयुक्त। पुण्यशील और सुशील नामक गणों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे दुःश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दिनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। पुण्यशील सुशील तमुत्थाप्यान तमुजम समभ्यनंदयन वाक्यम दुर्धर्म संयुत। साधु साधु द्विज श्रेष्ठ यम विष्णु रता सदा दीनानुकंपी धर्मज्ञो विष्णु व्रत परायण। तो गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा व्रत रहते हो। तुम दिनों पर दया करने वाले हो, धर्मज्ञ हो और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था उसका आधा फल देने से कल आगे 100 जन्मों के संचित पाप नष्ट हो गए हैं। जन्मांतर सर्वभूतम पापम तन्विलियम गतम स्नाना देव गतम पापम यस्याक पूर्व कर्मजम। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है उसके फल से विमान आया है। क्या समझे, भगवान के पास क्या कह रहे हैं, इसके पाप कैसे दूर हो गए, स्नान से दूर हो गए। जो तुमने पानी फेंका था, फेंक के मारा ना पानी, उससे तो इसके पूर्व जन्म के सब पाप दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है वो फल तुमने जो दिया उसके कारण उसको विमान आया है। कहाँ ले जाने के लिए, वैकुंठ, वैकुंठ से विमान आया है। जन्मांतर सद्वद्भूतम पापम तन्विलियम गतम स्नानादेव गतम पापम यदस्या पूर्व कर्मजम। हे साधु, ये नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। हरिजागरणाद्यश्चा विमानमिदमासितम वैकुंठम नियते साधो नाना भोगे युतात्वयम। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है उसके पुण्य से ये तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। दीपदान, कार्तिक ने जो दीपदान किया उससे क्या हुआ, तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए तुलसी का पूजन जो तुमने किया है उसका पुण्य दिया है उससे विष्णु के समीप जाने के देकारण्य हो गई है। सोचिए, कार्तिक में तुमने क्या किया है, जो दीपदान किया है उससे तो इसको तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है और कार्तिक में जो तुलसी का पूजन किया है इससे इसको क्या हुआ है, विष्णु के समीप जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और हे ब्राह्मण, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक को जाओगे। विष्णु सन्निधि का जाता तो याद अत्य कृपा निधे तुम अभ्यस्य भवश्यान्ते भार्याभ्याम सहायाशति। और विष्णु वैकुंठ भवन में भगवान के समीप तुम सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य है, अभी कृतज्ञ है, उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या क्या फल नहीं देते। वैकुंठ भवनम विष्णु सान्निध्यम च सर्वताम ते धन्य कृत कृत्यास्ते ते साम च सफलोभव यर भक्ति आराधितो विष्णु धर्म दत्त तो यथाम सम्यक आराधितो विष्णु किन्न यच्छति देहिनाम। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया है। उत्तानपाद के पुत्र कौन है? ध्रुव। जिन्होंने निश्चल स्थान प्रदान किया है, जिन भगवान के नाम स्मरण से मनुष्य सदगति को प्राप्त होते हैं। और तान चरण रेन ध्रुवत्व स्थापिता पुरा ये नाम स्मरणा देव तेनो यांति सदगति। ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त होकर उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गढ़ कहलाया। ग्राह गृहीत तो नागेन्द्रो यन्नाम स्मरणात् पुराम विमुक्ता सन्निधिं प्राप्तो जातोयम् जय संगकाम। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसे तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप जाओगे। इतस्त्वयार्चितो विष्णु तत्सान्निध्यं प्रयाससि बहुन्यद्य सहस्राणि भार्याद्वयोतस्यते। तब जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। अभी तुम वैकुंठ लोग जाओ, जब पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर जन्म लोगे पृथ्वी पर किस नाम से? तुम्हारी दो स्त्रियां होंगी और संसार में जो है प्रसिद्ध राजा होगे। तथा पुण्य छये जाते विराया सति भूतले सूर्य वंशोद्भव राजा विख्यातस्तुम भविष्यसि। तुम्हारा नाम होगा दशरथ। क्या नाम होगा? दशरथ। वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे और तीसरी कलहा भी साथ रहेगी क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य के अधिकारिणी है। समझ गए तीसरी कौन है? दशरथ की तीसरी पत्नी कौन है? कैकेयी। ये है वो। और दो पत्नियां पहले से थी, है ना, और ये तीसरी पत्नी भी तुम्हारी हो गई, है ना। नामना दशरथस्तत्र भार्याद्वयुतः पुनः तृतीयानया चापि यादे पुण्यार्थ भागिनी। उस जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। उस जन्म में भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र बनेंगे, देवताओं का कार्य करेंगे। तत्रापि तव सान्निध्यं विष्णु यासते भूतले आत्मानं तव पुत्रत्वे प्रकल्प्यामरे कार्यकृत। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से न यज्ञ न दान और न तीर्थ अधिक है। अर्थात ये कार्तिक व्रत सब यज्ञ तीर्थ दान में श्रेष्ठ है। विष्णु संतुष्टि कार्य का न यज्ञ न च दानानि न तीर्थान न तिकानि वै। हे ब्राह्मण तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला ये व्रत हुआ और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कला हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। धन्यो विप्रेन्द्र यतस्त्वेतन् व्रतं कृतं तुष्टिकरं जगद्गुरो यदर्थ भागात् सफला मुरारे प्रणयते स्माभिर्यं सलोकताम्। तो ये हमने बहुत सुंदर कथा आपको पढ़ के सुनाई। आप लोगों में से कितने लोग पहले से इस कथा को जानते थे? हाथ उठाइए। एक दो तीन, ज्यादा लोग नहीं जानते थे। और जो जानते थे वो भी बार बार सुने, इसमें इतना रस है। ये अखबार की तरह नहीं, न्यूज़पेपर की तरह नहीं है, एक बार पढ़ दिया तो फेंक दिया, ऐसा नहीं है। ये कथा ऐसी है, नित्य नवीन, है ना। तो समय तो अब हो चुका है, लेकिन आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? क्योंकि हाँ बोलिए।
आपने
द्विज श्रेष्ठ, द्विज श्रेष्ठ का मतलब क्या है, कौन बताएगा? ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्विज का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ब्राह्मण।
कथा में आपने बताया
बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ये प्रश्न हुआ ना, क्योंकि जो सुनता है तो ऐसे मंथन करता है, ऐसे प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, भगवान के दिहत गत्वान अनिवर्तन्ते तत् धाम परम, जहाँ जाकर कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। और यहाँ पर पुण्यशील और सुशील जो भगवान के पार्षद हैं वो कहते हैं कि पुण्यशील होने पर तुम वापस आओगे पृथ्वी में, इस बात को समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वैकुंठ में पुण्यशील नहीं होता, पुण्यशील नहीं होता, लेकिन फिर भी वैकुंठ का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि जिस हिस्से में व्यक्ति का पुण्यक्षीण होता है, आप समझे, और उस ब्राह्मण ने जो है मतलब जो कुछ भी व्रत किया था उसमें उसकी पूरी योग्यता तो नहीं आई थी कि वो भगवान के धाम जाए, लेकिन व्रत के प्रभाव से वो भगवान के धाम चला गया, तो दोबारा जन्म लेगा योग्यता प्राप्त करने के लिए कि वो फिर वैकुंठ में जाए, आप समझ रहे। तो ये जो है मतलब शक्ति है इस व्रत की, कार्तिक व्रत की इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति अगर योग्य ना हो और वैकुंठ चला जाता है, अरे वो वैकुंठ चला जाता है, तो फिर वैकुंठ से जब वापस आता है तो योग्यता, वैकुंठ जाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन जाना निश्चित है, आप समझ रहे। तो वो स्वर्ग से जैसे कोई गिरता है तो छीने पुण्य मर्त्य लोकम मिशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गदागतम काम काम लभन्ति। भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में कोई जाता है, तो ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम मिशालम छीने पुण्य मर्त्य लोकम मिशन्ति, पुण्य छीन होने पर मर्त्य लोक में आते हैं, और एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गदागतम काम काम लभन्ति, गतम आगतम प्राप्त करते हैं, तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चलता रहता है उनका, स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते हैं फिर स्वर्ग जाते हैं फिर गिरते हैं, बहुत खराब स्थिति है, आप समझ रहे। वैकुंठ में कोई अगर जाए और उसकी योग्यता नहीं है, क्योंकि शक्ति बहुत है किसी साधु के संग से, कोई व्रत के प्रभाव से, है ना, या अंतकाल में स्मरण कर लिया, अंतकाल में स्मरण हो गया किसी कारण से, तो वैकुंठ में चला जाएगा, लेकिन योग्यता तो है नहीं उसकी जाने, तो क्या होता है वैकुंठ से आता है, लेकिन वो फिर ऐसा नहीं है कि फिर इस संसार में वो जो है सड़ेगा, वैकुंठ से आता है और वैकुंठ की पूरी योग्यता प्राप्त करके फिर वैकुंठ में वापस जाता है, ये है, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय, जगद्गुरु श्री हनुमान की जय।